कारण था कुसंग, दूसरा कारण साधन, तीसरा कारण संबंध, तीसरा कारण संबंध। इस अलौकिक जीवन में जो अलौकिक संबंध है वो सारे संबंध, जैसे पहले ही कहा बाबा ने, कहा है तुम्हारा आपस में एक ही संबंध है, कौन सा? भाई और बहन, बस। इसके अतिरिक्त किसी भी कारण से और कोई दूसरा संबंध यदि बनाता है तो माया वहीं से शुरुआत होगी। तुम्हारा एक ही संबंध है, इसके अतिरिक्त यदि दूसरे कोई भी संबंध बनते हैं, जैसे कि कौन से? भाई बहनों के अतिरिक्त ब्राह्मण परिवार में जो संबंध बनते हैं और जो माया का रूप धारण करते हैं, वो कौन से संबंध है? कुमारों की तरफ से कौन से संबंध है? अलौकिक संबंधों में वो कौन से संबंध है भाई बहन के अतिरिक्त जो माया बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर, ये एक अलग प्रकार का पॉइंट है, परंतु हां ये भी माया बन सकती है। और कौन सा संबंध? हम संबंध पूछ रहे हैं। किसी को मां बना देना, किसी को पिता बना देना, किसी को विशेष भाई बना देना, किसी को विशेष बहन बना देना, या फिर किसी को प्रेमी बना देना। या किसी से प्रेम हो जाना, कहां? यहां, बाहर नहीं, इस परिवार में। कोई बार बार यदि सहयोग दे, उसके प्रति एक विशेष आकर्षण तैयार हो जाना, कोई हमारी भावनाओं को थोड़ा अच्छे से समझता है, उसके प्रति विशेष लगाव, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति, जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, उससे विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जाना, यहां से माया की शुरुआत है। यदि व्यक्तियों से अपनी दिल की बातें करने लगो, यदि व्यक्तियों से अपने दिल की बातें शेयर करने लगो, तो परमात्मा से शेयर करना स्वतः ही कम हो जाएगा। यदि व्यक्तियों को अपना आधार बनाओ तो परमात्मा आधार है, ये महसूसता स्वतः ही कम हो जाएगी। यदि व्यक्तियों से मित्रता बढ़ाओ, व्यक्ति मित्रता, ये एक दूसरा संबंध है, फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड। कुमार जीवन अर्थात निराधार, कुछ नहीं चाहिए किसी का, ना तो किसी का भोजन चाहिए, ना तो किसी का प्यार, ना किसी की केयर, ना किसी का अटेंशन। बीमार पड़ जाओ तो स्वयं भगवान मदद करने आएगा, यदि किसी और की कामना की तो उसकी मदद कम हो जाएगी। चाहे बीमार पड़ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, जिनका ये अटल निश्चय है कि हमारा केवल एक है और उस एक से ही मदद लेनी है, बाबा ने कहा है मांगना नहीं है, मांगने का सूक्ष्म स्वरूप है प्रेम, केयर, अटेंशन, अफेक्शन, ये चाहती है आत्मा, एप्रिसिएशन। हम कुछ करें तो हमें इच्छा होती है कि दूसरे हमारी स्तुति करें, हम कोई सेवा करके आए तो हमारी इच्छा होती है कि बहन जी ये सबके सामने कहे, क्या कहे कि ये सेवा इस भाई ने की। अगर नहीं कहे तो तो थोड़ा दुख। क्या हम सेवा प्रशंसा के लिए कर रहे हैं? वास्तव में अगर देखा जाए तो अध्यात्म के साधक के लिए सभी प्रशंसाएं विष की तरह है। अगर वो उसे स्वीकार करता है और समझता है मैं इतना महान हूं, वही सबसे बड़ी बाधा है। डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। नाम की कामना, विवेकानंद ने कहा है, इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। यहां पर रॉयल माया चालू होती है, मैंने किया, मैं हूं। इस संसार में सबसे भयंकर जो एक अभिमान है वो है ज्ञान का। मैं ज्ञानी हूं। यूनान में दार्शनिक हुआ है सोक्रेटस इंग्लिश में जिसको कहते हैं, उसने अपना एक अच्छा अनुभव सुनाया है। डेल्फी के जो देवता थे उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि सुकरात इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है। जब लोग उसके पास गए और उसे बताने लगे कि यह घोषणा हुई है, आकाशवाणी हुई है कि इस संसार में तुम सबसे ज्ञानी हो, तो वह कहता है एकदम गलत, मेरे जैसा अज्ञानी महाअज्ञानी संसार में कोई नहीं है। वहां उसने एक बात कही है, मैं जब बहुत छोटा था सोचता था मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास जानने के लिए अब कुछ भी नहीं है, मैं महाज्ञानी हूं। फिर लिखता है मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तब पता चला कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और जब अब बूढ़ा हूं और अब तो मुझे यह समझ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता है, और तब यह घोषणा होती है कि तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। तो जो महाज्ञानी होगा उसकी निशानी है संपूर्ण निरंकारिता, ज्ञान की पराकाष्ठा, परंतु पांव जमीन पर, यह ज्ञानी की परिभाषा है। इच्छाएं, सपोर्ट, प्रेम, आधार, कोई सुनने वाला, कोई हो जिसको हम अपना दुखड़ा सुनाएं, ये सारी इच्छाएं जो है आत्मा को परमात्मा से अलग करती है। एक आधार, एक बल, एक आश्रय, एक की पनाह, एक में विश्वास, एक में श्रद्धा, एक में संपूर्ण निश्चय, एक के आधार से जीने वाले। स्वामी विवेकानंद ने कही कहा है, मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए जो कि खड़े हो जाए और कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त तो हमारा और कोई है ही नहीं। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म। केवल 100 ऐसे और ये संसार परिवर्तन होगा। जितने अधिक सपोर्ट, जितने अधिक सहारे, उतना ही एक से प्रीत कम, स्वतः ही कम होने लगती है। और आज के युग के चैटिंग और सर्फिंग करने वाली आत्माएं अपना सपोर्ट कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती है इस संसार में। परंतु वो वैसा ही है जैसे कि एक घाव दूसरा घाव, दो घाव मिलकर सोचते हैं अब हम दोनों ही ठीक हो जाए। एक शिकारी किसी जंगल में गया, शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया, एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंच गया जंगल में जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। भटक रहा है यहां से वहां, एक मनुष्य तक नहीं, एक परिंदा तक नहीं, ऐसे उस सुनसान बियाबान जंगल में भटकता हुआ वो 3 दिन तक भटकता रहा और चौथे दिन अचानक उसे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखा। इतनी खुशी हुई उसे, इतनी खुशी हुई, और जाकर उस व्यक्ति के पास गया और जो दूसरा व्यक्ति बैठा था वो भी इसी तरह भटका हुआ था। दोनों ही मिले और दोनों को बहुत खुशी हुई, परंतु थोड़ी देर के बाद दोनों ही दुखी हो गए। पहले एक भटका हुआ था, अब दोनों ही भटके हुए हैं। ऐसे दो भटके हुए व्यक्ति समीप आते हैं, सोचते हैं मंजिल तक पहुंचेंगे। समाज इसे विवाह की संज्ञा देता है। जो खुद भटके हुए हैं, जो खुद प्यासे हैं, जो खुद दुखी है, दूसरों का दुख कैसे दूर करेंगे? इस कुमार और कुमारी जीवन में ये सोचना कि ये अगर मिल जाए, ये अगर साथ हो, तो हम अध्यात्म के मार्ग में बहुत उन्नति कर सकेंगे। रोल्ड गोल्ड माया जिसको बाबा कहते हैं, माया का भी रॉयल रूप पवित्र प्रेम। योग करना है तो वही चाहिए, तो अच्छा योग लगता है। माया को पहचानना, माया के सूक्ष्म स्वरूपों को जानना, वो दिखाया है शास्त्रों में। जैमिनी पूर्व मीमांसा का जो प्रवर्तक है, भारत में 6 फिलॉसफी है षडशास्त्र, उसमें से एक पूर्व मीमांसा है, उसका जो स्थापन करने वाला है जैमिनी, उसके जीवन की कहानी बताते हैं कि व्यास के आश्रम में वो रहता था और व्यास ने उससे कहा एक दिन कि सन्यासी ने कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए। वो कहता है मैं ब्रह्मचर्य में एकदम स्थित हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन व्यास उससे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं कहीं बनारस 3 मास के लिए, तब तक तुम यहां रहना। वो कहता है ठीक है। व्यास तो चले जाते हैं। दिखाया है एक रात शाम के समय जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी है, तो एक महिला बाहर खड़ी है उसके आश्रम के सामने, तो वो उससे कहती है, वो उसको देखता है और कहता है कि तुम तो यहां भीग जाओगे, क्यों नहीं तुम मेरी कुटिया में थोड़ा विश्राम कर लो। वो कहती है मैं कैसे विश्राम कर सकती हूं, आप तो सन्यासी हो। वो कहता है घबराने की बात नहीं, मैं संपूर्ण नैष्टिक ब्रह्मचर्य में स्थित हूं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से अंदर बैठ जाओ, ये आराम करो। तो वो स्त्री मान जाती है और वो अंदर चली जाती है। दिखाया है कि वो बाहर सोया हुआ है बाल ब्रह्मचारी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाती है मन थोड़ा डोलने लगता है, देखता है सोचता है जाकर थोड़ा बात तो करूं, पूछता है एक बार जाकर कोई तकलीफ है कुछ चाहिए। वो कहती है कुछ नहीं। फिर आता है, फिर सोता है, फिर कुछ इच्छाएं मन में प्रकट होती है, फिर जाता है, कहता है कि बाहर ठंड बहुत है, मैं भी इधर ही रुक जाता हूं। थोड़े देर के बाद इच्छाएं और बढ़ती है, सोचता है, उसको कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये मेरा भी, मेरे पास कुछ वस्त्र है इसे ले लो। किसी ना किसी रीति से बात करता है, और उसमें दिखाया है कि थोड़े देर में उसका हाथ पकड़ लेता है और उतने में ही व्यास प्रकट हो जाते हैं। वो स्त्री के रूप में उसके ही गुरु वहां आते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए और उसके उससे कहते हैं, कहां है तुम्हारा ब्रह्मचर्य? माया किसी भी रूप में कहीं से भी आ सकती है, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, स्त्रियों को पुरुष पुरुष के रूप में और पुरुषों को स्त्रियों के रूप में। इसके लिए बाबा ने इस यज्ञ में सीधा एक ही संबंध बनाया है, कौन सा? भाई और बहन, दैट्स इट। पुकारना भी उसी नाम से, इसके अतिरिक्त और किसी और नाम से पुकारा वहां पर भी माया की शुरुआत है। तो कदम बहकने का तीसरा कारण कौन सा है? संबंध। चौथा फैशन, सफेद में भी फैशन। सफेद में भी अलग अलग प्रकार की फैशन, ये फैशन का युग है। यहां पर माया भी उस रूप से आती है, नई नई चीजें चाहिए, नए नए चीजों का संग्रह करना, दूसरे हमारे पास गाड़ी है ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु दूसरे की गाड़ी देखते ही हमारी फिर बैलगाड़ी लगने लगती है, अब वो चाहिए अच्छी वाली, रिसेंट नया मॉडल चीजें, पहनने की चीजें, फैशन करने की चीजें, ब्यूटी वाली चीजें। आत्मा का श्रृंगार इन सब चीजों से नहीं होता है, आत्मा का श्रृंगार तपस्या से होता है, आत्मा का श्रृंगार संपूर्ण पवित्रता से होता है। जो पवित्र है वही सुंदर है, जिनमें सत्यता है वही सुंदर है, और वहीं पर शिव है। तो फैशन के इस जंजाल से भी स्वयं को बाहर निकालना है। और एक अंतिम क्या हो सकता है, वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, हम कुछ ही ले रहे हैं, ऐसे वो कौन से कारण हैं जिस वजह से कदम भटक रहे हैं? ब्राह्मणों के, केवल ब्राह्मणों के भी नहीं, जो अच्छे पुरुषार्थी है, ऐसे जो जागृत है, जिन्हें पता है हम क्या है, पहले क्या थे और अब क्या है, पहले का जीवन क्या है, अब का जीवन क्या है, पहले किस दुख में थे बाबा के मिलने के बाद, अब किस सुख में है, ऐसी जो श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनके कदम बहकने के क्या कारण है? क्या नहीं, कारण क्यों हो रहा है ऐसा? प्राप्ति का अनुभव भी क्यों नहीं हो रहा है? विस्मृति के ही कारण, खान पान में संयम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वाद, जो आत्माएं स्वाद की गुलाम है, बाबा ने कभी महावाक्य उच्चारण किए, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। विदेश में एक व्यक्ति हुआ है लंदन में, थॉमस पार, उसकी उम्र थी 153 ईयर्स, 17वीं शताब्दी में। उसका जीवन संपूर्ण संयमित जीवन था, संपूर्ण संयम से बिताया हुआ जीवन। उसकी मृत्यु का कारण ढूंढने का प्रयास किया गया, उसने अपना सारा ही जीवन मिताहार, संयमित आहार से बिताया। किंग चार्ल्स वन ने उसको डिनर के लिए बुलाया था रात में, और इतना उसको खिलाया, उतना उसको खिलाया जो कि उसने कभी नहीं खाया था उस तरह का, इतना स्वादिष्ट। और बताया गया उसी रात उसकी मृत्यु होती है। द ओल्ड पार, थॉमस पार, अति भोजन, गरिष्ठ भोजन। योगियों का भोजन कैसा होता है? सतोगुण, सतो प्रधान। योगियों के हाथ का भजा बना हुआ भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, बाप की याद में स्वीकार किया हुआ भोजन, मौन में स्वीकार किया हुआ भोजन। जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? अर्थ दोष, जाति दोष, स्थान दोष, ये सारे दोष है। इन सब से मुक्त हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भोग, भगवान को स्वीकार कराया हुआ भोजन। बाबा के पास चार थाली आई भोग की, आपको बताना है बाबा किसका भोजन स्वीकार करेगा। सबसे पहले करेगा तो चारों ही, पर बहुत ज्यादा प्यार से किसका करेंगे। सबसे पहले थाली आई सेंटर से, ठीक है, कमाने वाला कोई और, लाने वाला बाजार से कोई और, बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला कोई और खाने वाला वही या कोई और। ये एक थाली आई। दूसरी भी थाली आई बाबा के पास। कहां से आई होगी ये थाली? एक गृहस्थी से आई, ठीक है। यहां कमाने वाला कोई और या स्वयं, कोई और या स्वयं, भोजन से सामग्री लाने वाला स्वयं या कोई और, घर का ही, भोग लगाने वाले स्वयं या कोई और। यहां पे एक बात एडिशन है, कमाने वाले भी स्वयं है, उसी वहीं से है, ठीक है। यह दूसरी थाली बाबा के पास आई भोग की। तीसरी थाली आई और एक मधुबन से। वहां तो कहां से आ रहा है पता नहीं, मधुबन में आ रही है थाली। खरीदने वाले कोई और, पकाने वाले कोई और, छानने वाले, साफ करने वाले कोई और, पकाने में भी अलग अलग पकाने वाले अलग अलग, भोग लगाने वालों अलग, परोसने वाले अलग, और फिर थाली है। और वो थाली पहुंची बाबा के पास। ये तीन थालियां पहुंची है बाबा के पास। बाबा तो सभी को बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। चौथी एक थाली आई है एक कुमार के घर से। खुद कमाता है, खुद मार्केट जाता है, खुद सामग्री लाता है, खुद भोजन बनाता है, खुद भोग लगाता है, और खुद बाप की याद में खाता है। तो बताओ सबसे ज्यादा थाली कौन सी पता पाएगी बाबा को? तो सभी कुमार अपना भोजन खुद बनाए, कोई डिपेंडेंस ना हो किसी के ऊपर, स्वयं स्वयं के हाथ से बना हुआ भोजन में जो स्वाद है और जो रस है कहीं और नहीं हो सकता है। और सभी को भोग लगाकर ही भोजन स्वीकार करना है। इस सभा में कौन कौन सी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है 24 घंटे में एक बार, और बाकी हर एक को एक बार भोग लगाना अवश्य है। जो भी हम पकाए बनाते समय भी उसकी याद, चौका, हिंदी में शब्द है ना चौका, चार चीजें होती है उसमें। भोजन कैसा आ रहा है, किस कमाई से आ रहा है, एक भोजन कितना साफ सुथरा है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, तीसरा भोजन बनाने वाले जो है उसके मन में संकल्प कौन से है, और चौथा खाना जो खा रहा है वो किस संकल्पों के साथ भोजन खा रहा है, चौका। भारत में जो लोग भोजन बनाते हैं शादियों में उनको क्या कहा जाता है? महाराज। सुना होगा ना महाराज, क्यों महाराज कहते हैं उनको? उनके जो वस्त्र होते हैं वहां कहीं सिलाई नहीं होती है, वो जहां भोजन बनाते हैं वहां और किसी को एंट्री नहीं है, इतनी स्वच्छता इतनी पवित्रता। बाबा वल्लभाचार्य का उदाहरण देते हैं मुरलियों में, किसी ने स्पर्श किया तो नहीं खाएंगे, इतनी पवित्रता का वो पालन करते हैं। तो हमारा किचन जैसे कि योग ग्रह बन जाए, मंदिर बन जाए। दादी जानकी कहती है कि अगर किसी के घर में भी जाते तो एक ही चीज देखूंगी, किचन कैसा है, बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं बिना धुलाई किए, रात को भोजन बनाया वैसे ही बर्तन रख दिए, वो बर्तन रोते हैं ऐसा कहते हैं, अगर साफ करके उसको नहीं रखो तो। भोजन संपूर्ण पवित्रता के साथ, भोजन संपूर्ण शुद्धि के साथ, संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, स्वमान के संकल्प के साथ, बाबा की याद के साथ, इस संकल्प के साथ कि जिनके लिए भोजन बना रहे हैं वो भोजन खाते ही मगन अवस्था को प्राप्त हो जाए। सभी माताओं को रोज 24 घंटे में एक बार भोग लगाना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति, गीता में कहा है मुझे क्या चाहिए, पत्र पुष्प फल इतना भी दे दो तो मैं स्वीकार करता हूं, मुझे ये बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए तुम्हारी। भाव क्या है, भावनेचा भुकेला, वो भाव देखता है किस भाव से दिया जा रहा है। और सभी कुमार स्वयं बनाए, उसमें जो बल है उसमें जो शक्ति है वो ब्रह्मचर्य को पोषित करती है। रोज 24 घंटे में एक बार लगाना है। अच्छा, जो लोग भोजन नहीं बनाते वो भी भोग लगाए, अर्पण करना, जो अर्पण किए बिना खाते हैं वो कौन है, गीता में क्या लिखा है, चोर। इसके लिए अर्पण करके भोजन स्वीकार करना। तो और भोजन भी ऐसा ना हो कि जो खा के नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि खा के पेट खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो न मिले तो हलचल। कुछ दिनों पहले मुरली आई थी, मैं देवताओं की सभा में नहीं आता, मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता जहां पर मालठाल है, मैं कहां आता हूं, मैं गरीबों की महफिल में आता हूं जहां दो रोटी भी नहीं मिलती। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, सुना ना सभी ने, तो उसको बहुत ही प्रेम से, अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से, बिना कोई कंप्लेन किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नमक कम है, उसमें वो कम है, ये ज्यादा तीखा है, ज्यादा ऐसा है, ज्यादा वैसा है, जो है स्वीकार करना प्रेम से। निगेटिव संकल्प के साथ भोजन स्वीकार करना यह हिंसक भोजन है, वो वैसा ही है जैसा मांस खाने से जो असर होता है देह पर वो उससे होता है। तो यहां इस क्लास को पूरा करते हैं। कौन कौन सी बातें सुनाई, कदम बहकने की, सबसे पहला कुसंग, दूसरा साधन, तीसरा संबंध, चौथा फैशन, और पांचवा स्वाद। कारण तो बहुत है परंतु समय का अभाव है हमारे पास।